राधा कृष्ण भगवान की। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे, राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, yeah। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गाइए सब लोग प्रेम से। राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। प्रभु पद शिल प्रभु पद जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल नित्य राधा गिरधारी भगवान की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की। शशि गौर निताय की। श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 15। मेरे पीछे दोहराइए।
कामं प्रयाहि जहि विश्वसोवमेहम्। त्रैलोक्यरावणम् वाप्नुहि वीरपत्नीम्। बन्दीहि सेतुमिहते यशशो वितत्ये। गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा। कामं प्रयाहि जहि विश्ववसोवमेहम्। त्रैलोक्यरावणमवाप्नुहि वीरपत्नीम्। बन्दीहि सेतुमिहते यशशो वितत्ये। गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा कामं प्रयाहि जहि विश्ववसोवमेहम् त्रैलोक्य रावणमवाप्नुहि वीरपत्नीम् बन्देहि सेतुमिह ते यशसो वितत्ये गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा जहि विश्ववसोवमेहम् त्रैलोक्य रावणमवाप्नुहि वीरपत्नीम् बन्देहि सेतुमिह ते यशसो वितत्ये गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा कामं प्रयाहि जहि विश्ववसोवमेहम् त्रैलोक्य रावणमवाप्नुहि वीरपत्नीम् बन्देहि सेतुमिह ते यशसो वितत्ये गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा कामं प्रयाहि जहि विश्ववसोवमेहम् रावणं वा पत्नी। वंदीते
शब्दार्थ इस प्रकार से हैं, मेरे साथ बोलिए, कामम इच्छानुसार प्रयाही मुझ में होकर चले जाएं, जही विजय प्राप्त करे, विश्रवसह विश्रवा मुनिका अवमेहम मूत्र जैसा प्रदूषण, त्रैलोक्य तीनों जगतों के लिए रावणम रावण जैसा व्यक्ति जो रोदन का कारण है, अवाप्रोही फिर से प्राप्त करे, वीर हे वीर पुरुष पत्नीम अपनी पत्नी को, बंधी तैयार करो बांधो, से तुम पुल इह यहां, ते आपका यशस यश, वितत्ये विस्तार करने के लिए, गायंती महिमा का गान करेंगे, दिग्विजयिनः सारी दिशाओं को जीतने वाले बड़े बड़े योद्धा, यम जिसके उपेत्य निकट आकर, भूपा बड़े बड़े राजा। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार से हैं, हे प्रभु आप इच्छा अनुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं, निसंदेह आप इसे पार करके रावण की पुरी में जा सकते हैं जो उपद्रवी है और तीनों जगतों को रुलाने वाला है। वह विश्रवा का पुत्र है किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत है, कृपया जाकर उसका वध करें और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। हे वीर यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। आइए श्री प्रभुपाद जी अपनी कलम चलाते हैं। कहा जाता है कि पुत्र तथा मूत्र एक ही स्रोत से निकलते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग परपोर्ट लिखा है, जरा संभल के सुनिएगा। कहा जाता है कि पुत्र तथा मूत्र एक ही स्रोत से निकलते हैं। जब पुत्र भगवत भक्त होता है तो पुत्र जन्म सार्थक होता है, किंतु यदि वह अयोग्य हुआ तो अपने परिवार के लिए कलंक बनता है और मूत्र के ही तुल्य व्यर्थ होता है। यहाँ पर रावण की उपमा मूत्र से दी गई है क्योंकि वह तीनों लोकों में उपद्रव कराने वाला था। इस तरह देहधारी समुद्र ने इच्छा व्यक्त की कि भगवान उसको मारे। भगवान रामचंद्र का एक गुण है उनकी सर्वशक्तिमता। भगवान चाहे तो भौतिक अवरोधों या असुविधाओं की परवाह न करते हुए कर्म करे, किंतु यह सिद्ध करने के लिए कि वे ईश्वर नहीं है उन्होंने समुद्र के ऊपर एक अद्भुत पुल का निर्माण कराया। आजकल किसी ऐसे कृत्रिम ईश्वर को खड़ा करने का फैशन बन चुका है जो कोई असामान्य कार्य नहीं कर सकता। मनुष्य व्यक्ति थोड़े से जादू से ही चमत्कृत होकर कृत्रिम ईश्वर चुन बैठता है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि ईश्वर कितना शक्तिशाली होता है। किंतु भगवान रामचंद्र ने पत्थरों को तैराकर समुद्र पर पत्थर का पुल बनवाया, यह प्रमाण है ईश्वर की असाधारण अद्भुत शक्ति का। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा न संपन्न हो सकने वाले असामान्य कार्य को करके अपनी असाधारण शक्ति प्रदर्शित न कर दे, उसे ईश्वर क्यों माना जाए? हम रामचंद्र जी को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने पुल बनाया, और श्री कृष्ण को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। हमें चाहिए कि जिस किसी धूर्त को ईश्वर या ईश्वर का अवतार न मान बैठे, क्योंकि ईश्वर अपने विविध कार्यकलापों में विशिष्ट विलक्षणताएं प्रकट करता है। अतएव भगवान स्वयं ही भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वही शरीर को त्यागने के बाद फिर से इस जगत में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। भगवान के कार्यकलाप सामान्य नहीं होते, वे दिव्य रूप से अद्भुत होते हैं और अन्य किसी जीवधारी द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते। भगवान के कार्यकलापों के सारे लक्षण शास्त्रों में वर्णित हैं और उन्हें समझने के बाद ही भगवान को यथारूप में ग्रहण किया जा सकता है। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे हरे राम हरे राम। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान सादर सुनही ते तरही भव सिंधु बिलाजल जान। परम सौभाग्य से विभूषित श्रीमद् भागवत नवम स्कंध एवं 10वां अध्याय, इस प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भगवान श्री रामचंद्र की कथा का श्रवण करा रहे हैं। वैसे इस अध्याय के प्रारंभ में ही श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र की कथा अनेकों तत्वदर्शियों के द्वारा विचरित हो चुकी है, अनेकों तत्वदर्शियों ने भगवान रामचंद्र की कथा अनेकों बार कही है और आपने भी अनेकों बार भगवान राम के गुणगान को सुने हैं, अतः मैं आपको यह कथा संक्षिप्त में सुनाऊंगा। यह बात सत्य है, कि भगवान श्री रामचंद्र के गुणगान प्रत्येक नगर प्रत्येक गांव गांव में पाए जाते हैं। संतों के द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि राम कथा रामायण लिखने वाले एक दो या तीन नहीं, जैसे भागवत लिखने वाले वेद व्यास जी हैं, परंतु रामायण लिखने वाले सैकड़ों भक्त हैं। कहते हैं रामायण शत कोटि अपारा, रामायण जो है 100 करोड़ शत कोटि 100 करोड़ लोगों ने मिलकर रामायण लिखी है अलग अलग। परंतु यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तत्वदर्शी भी, परंतु उनमें कुछ लोगों ने रामायण में तत्वों का वर्णन किया है, और वह तत्वदर्शी भी का अर्थ होता है वाल्मीकि आदि ऋषि मुनि। वाल्मीकि आदि ऋषि मुनियों ने भगवान राम के चरित्र के विषय में विस्तृत से वर्णन किया है। अतः परीक्षित, मैं बड़े संक्षिप्त में इस कथा को श्रवण कराऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। भागवत का यह 9वां स्कंद ईशानु कथा के अंतर्गत है, और इस स्कंद में इस अध्याय में सूर्य वंश के राजा महाराजाओं की कथा चल रही है। आप सब जानते हो कि भगवान श्री रामचंद्र का जन्म सूर्य वंश में हुआ और कृष्ण का जन्म सोम वंश में हुआ। वैसे तो ब्रह्मा जी से अनेक वंश प्रकट हुए, परंतु उन अनेक वंशों में सोम वंश और सूर्य वंश ये दोनों प्रचलित हैं, फेमस हैं, क्योंकि यह दो वंश में साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। अतः इस सूर्य वंश में राजा खटवांग के परंपरा में भगवान श्री रामचंद्र का अवतार किस प्रकार से हुआ ये सुखदेव गोस्वामी ने श्रवण कराया। परंतु भगवान श्री रामचंद्र की कथा श्रवण करने से पहले श्रुति फल में आचार्यगण कहते हैं कि सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान। रघुनायक भगवान श्री रामचंद्र के गुण कैसे हैं? कहते हैं सकल सुमंगल दायक। भगवान श्री रामचंद्र की कथा और भगवान श्री रामचंद्र के गुण को सुनने से सकल सभी प्रकार के सुमंगल हमारे जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। वैसे हमारे जीवन में देखा जाए तो अमंगल ही अमंगल है, परंतु भगवत कथा सुनने से जीवन में सुमंगल हो जाता है, मंगल ही मंगल। और इतना ही नहीं, सादर सुन ही ते तरही भव। यदि कोई स आदर आदर के साथ भगवान की कथा को सुनता है, आदर के साथ का अर्थ होता है कि भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखकर, इसी के साथ साथ जिस ग्रंथ से भगवान की कथा कही जा रही हो उस ग्रंथ पर पूर्ण श्रद्धा रखकर, और इसी के साथ साथ इस कथा को बोलने वाले वक्ता के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखकर, आदर रखकर। कहते हैं सादर सुन ही, आदर के साथ है? पूर्ण आदर बुद्धि के साथ यदि कोई व्यक्ति भगवान राम की कथा को सुनता है तो कहते हैं सिंधु बिना जल जात। वे व्यक्ति इस भवसागर को बिना किसी नौका के इस भवसागर को पार कर जाता है जो भगवान श्री रामचंद्र की कथा को आदर के साथ सुनता है। तो मन में प्रश्न हो सकता है कि बिना किसी नौका के भवसागर को पार कर जाता है? बोले हाँ, ये नौका जो है सागर को पार करने के लिए साधन के समान। भगवान श्री रामचंद्र की कथा को सुनना ये इतना बड़ा साधन है कि यदि कोई भगवत कथा सुनता रहे तो अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। भगवान की कथा रूपी कोई नौका में बैठ गया तो उसे और कोई नौका की आवश्यकता नहीं। अतः भगवत कथा सुनना ये पूर्ण भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं भक्ति के 5 महासाधन बताते हुए, बोलिए 5ों महासाधन अपने आप में पूर्ण है। यदि कोई मात्र भगवान की कथा श्रवण करे तो मात्र कथा श्रवण करने से भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। और चैतन्य महाप्रभु ने यहां तक कह दिया, और इस पांच साधनों में से कोई एक साधन कर ले और एक साधन संक्षिप्त बहुत थोड़ी सी मात्रा में अल्प मात्रा में कर ले, बहुत थोड़ी मात्रा में भी इस एक साधन का संग करने से व्यक्ति इस भवसागर को पार कर जाता है। अतः भगवत कथा सुनने की बहुत बड़ी महिमा है और उसमें भी भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र जो हमारे मन को हमारे हृदय को आनंद देने वाले हैं। भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति में आचार्यगण कहते हैं, इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। बड़े बड़े मुनि जो संसार के वस्तु से उपराम हो चुके हैं, जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा मुनि है, जिसके हृदय में पूर्ण वैराग्य उदित हो चुका है, इस संसार की बड़े से बड़ी स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री हो, बहुत सुंदर फिल्म हो, इस संसार की कितनी भी सुंदर वस्तु उसे लुभाती नहीं है, ऐसी वस्तु से वैराग्य प्राप्त करके जो वन में चले गए हैं, ऐसे विरक्त वैरागी मुनि भी जब भगवान राम की कथा को सुनते हैं तो लट्टू हो जाते हैं, अपने वैराग्य को भूल जाते हैं। रामायण में भी यह प्रसंग आया है, जब भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर में गए, विश्वामित्र जब उन्हें लेकर गए थे और जनक जी ने जब भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन किया, तब गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले जनक, जनक का एक नाम है विदेह, विदेह जो अपने देह से पूर्ण रूप से परे हैं, अर्थात जिसकी देह में अंश मात्र भी बुद्धि नहीं है, लेश मात्र भी जिसकी अपने देह में बुद्धि नहीं, जो नित्य निरंतर आत्मा के स्तर पर स्थित है, ऐसे विदेह राज जनक ने जब भगवान श्री रामचंद्र को देखा तब विदेह से देह में आ गए। पूरे संसार से विरक्त राजा जनक भगवान राम को देखकर आसक्त हो गए और जनक के मन में यह हो गया कि यह लड़का यदि मेरी पुत्री का वर बन जाए, पति बन जाए, तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य हो जाए। तो बड़े बड़े मुनि का भी मन भगवान की लीला में रम जाता है, इसलिए तो गाना पड़ा ना, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। केवल मुनि ही नहीं, शेष जिसके अनंत मुख है, अनंत कर्ण है और अनंत कानों से निरंतर भगवान की कथा सुनते रहते हैं, परंतु जब भगवान राम की कथा को सुनते हैं तो अनंत शेष भी उनके मन में भी परम आनंद उदित हो जाता है। मन रंजनम, भगवान राम की कथा मन को रंजन कराने वाली। इस संसार में हम लोग मनोरंजन करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, है ना, टीवी देखते हैं, सिनेमा में जाते हैं, है? और मनोरंजन करने के लिए बहुत पैसे खर्च खर्च के भी अपना समय बर्बाद करते हैं, परंतु इस दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन यदि कोई है तो भगवान श्री रामचंद्र की कथा। शेष मुनि मन रंजनम, अरे संसार का मनोरंजन तो साधारण लोगों को लुभित करता है, परंतु भगवान श्री रामचंद्र का मनोरंजन बड़े बड़े मुनि शेष दिनेश गणेश और महेश को भी लोभित कर देता है। यह है भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र, यह है भगवान श्री रामचंद्र की महिमा। तो ऐसे भगवान श्री रामचंद्र की कथा श्री सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, परंतु बड़े संक्षिप्त में, बहुत राजधानी एक्सप्रेस चला रहे हैं, तीन अध्याय में तो राम कथा को समाप्त कर दिए। तो आइए, सुखदेव गोस्वामी श्री गंगा नदी के तट पर बैठे हैं, परीक्षित महाराज को राम कथा सुना रहे हैं। राम कथा सुनाते हुए संक्षिप्त में सुखदेव गोस्वामी ने कहा किस प्रकार से भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जन्म लेकर उनका नामकरण किया गया, गुरुकुल में पढ़ने गए और पढ़कर विद्या प्राप्त करके आए। विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान को लेकर चले गए और फिर सीता स्वयंवर हुआ, वापस अयोध्या में आए, सारी अयोध्या परम प्रसन्न है और अयोध्या में रहते रहते देवताओं के द्वारा भेजी गई सरस्वती मंथरा की जीवा के ऊपर बैठी, कैकेयी की मति बदली और भगवान राम को वनवास दे दिया। भगवान श्री रामचंद्र वन में गए। वैसे इस संसार की कोई ताकत भगवान को वन में भेज नहीं सकती है, ये तो भगवान की अपनी इच्छा थी मैं वन में जाऊं, नहीं तो कौन भगवान को वन में भेज सकता है। हमारे भगवान को वन बहुत प्रिय है, भगवान सिटी में रहना नहीं चाहते हैं। ये तो हम लोग चाहते हैं सिटी में रहेंगे, गांव से मुंबई में आते हैं, मुंबई से अमेरिका जाते हैं, सिटी में रहेंगे। भगवान को सिटी पसंद नहीं, भगवान को वन बहुत पसंद है। इसलिए भगवान का एक नाम ही है वन विहारी, जो वन में विहार करते हैं। सिटी विहारी भगवान का नाम नहीं है, या शहर विहारी, वन विहारी, वनों में विहार करते हैं। आप देखिए भगवान श्री रामचंद्र आए तो तुरंत कैसे भी करके मौका देकर अपनी माँ कैकेयी की मति को फेर कर वन में चले गए। और वास्तव में आचार्यों के द्वारा हमने सुना है कि भगवान ने कैकेयी को कहा था, कैकेयी आपको ये कार्य करना है। एक दिन की बात, भगवान राम लक्ष्मण इत्यादि बहुत छोटे थे और कौशल्या जी ने कहा कि जाओ कैकेयी जरा ये चारों बालकों को लेकर आओ, उनको भोजन कराना है। देवी कैकेयी चारों बालक खेल रहे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये सबको खेलने से निवृत्त करके भोजन कराने के लिए घर पर लेकर आ रही थी। अन्य तीनों भाई दौड़कर घर पर चले गए, भगवान श्री रामचंद्र धीरे धीरे चल रहे हैं और चलते चलते रास्ते पर खड़े रह गए। कैकेयी ने कहा बेटा राम क्यों तुम खड़े रह गए, क्या काम है? तीनों भाई जब चले गए, भगवान राम ने कैकेयी को बुलाया और भगवान ने कैकेयी को प्रणाम किया। बोले माँ, मैं जानता हूं तुम अपने पुत्र भरत से ज्यादा प्रेम मुझे करती हो और मैं भी मेरी माँ कौशल्या से ज्यादा प्रेम आपसे करता हूं, अतः माँ मैं आज आपसे एक वस्तु मांगना चाहता हूं, क्या तुम मुझे दोगी? कैकेयी ने कहा राम, इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी? तुम मांगो और तुम्हें ये प्रणाम करने की, प्रार्थना स्तुति करने की जरूरत नहीं है। तुम जो चाहिए तुम कहो तो मैं मेरा मस्तक काट कर दे दूंगी, तुम मांगो जो चाहिए। तब भगवान श्री रामचंद्र ने कहा माँ, मेरा इस संसार में अवतार दुष्टों का विनाश करने के लिए हुआ है, धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है, और यदि मैं इसी अयोध्या में पड़ा रहूंगा तो दुष्टों का विनाश नहीं होगा, धर्म की स्थापना नहीं होगी और साधु संतों को आनंद नहीं मिलेगा। अतः माँ मेरी एक इच्छा है कि मैं अयोध्या से बाहर जंगल में जाऊं, वन में जाऊं, और ये कार्य एकमात्र तुम कर सकती हो। करना क्या है माँ? वह दो वरदान तुम मेरे पिताजी से मांगो और मुझे वन में भेज दो। उसी समय कैकेयी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गई। बोले ये तो मैं जीवन में कभी नहीं कर सकती हूं। भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी शपथ खिलाई और बार बार विनंती की, और उस समय भगवान की विनंती करने से देवी कैकेयी ने भगवान श्री रामचंद्र को वन में भेजा। अन्यथा वास्तव में देखा जाए तो देवी कैकेयी जैसी नारी संसार में कोई हो नहीं सकती है। रामायण में तो वर्णन नहीं, परंतु संतों के मुख से हमने सुना है। जब भगवान श्री रामचंद्र रावण का वध करके वापस आए तब कैकेयी बड़ी लज्जित हो गई, अपना मुख भगवान को दिखा नहीं पा रही थी। भगवान राम चलकर कैकेयी के पास गए। कैकेयी रोने लगी, बोले मैंने बहुत गलत काम किया, तुम्हें वन में भेज दिया और इससे तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। आज के बाद इस संसार में अपनी बेटी का नाम कैकेयी कोई रखेगा नहीं। आज तक हमने देखा है लोग अपनी बेटी का नाम क्या क्या रखते हैं, है? परंतु कैकेयी कोई नहीं रखता है। कैकेयी और रावण, ये दो नाम इस संसार में कोई नहीं रखते हैं। तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। तब भगवान श्री रामचंद्र ने कहा माँ, इस संसार में मेरी वास्तविक हितेशु यदि कोई है तो माँ आप हो, और इस संसार में मैंने जो जो किया, मैं इस अयोध्या से बाहर गया, दुष्टों का विनाश, लाखों लाखों असुरों को मैंने मारा, पृथ्वी का भार दूर किया, दुष्टों का विनाश किया, साधु संतों को आनंद दिया और धर्म की स्थापना किया, ये जो कुछ भी किया इसका सारा श्रेय माँ केवल तुमको है, क्योंकि तुम्हारी कृपा से मैं वन में गया और मैंने ये बड़े बड़े पराक्रम किए, एकमात्र तुम्हारी कृपा से। तो इस प्रकार ये सारा श्रेय कैकेयी का है और कैकेयी की कृपा से भगवान ने ये बड़े बड़े कार्य किए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान रामचंद्र वन में गए और वन में जाकर भगवान की वास्तविक लीला प्रारंभ हुई। मैं ये कह रहा था कि भगवान राम भी वन में गए, कृष्ण तो जन्म लेकर जन्म के दिन ही मथुरा शहर को छोड़कर वृंदावन में चले गए, तुरंत वन में भाग गए। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते ही इतने बड़े शहर को छोड़कर चले गए, लोग शहरों में जाना चाहते हैं, ये शहर छोड़कर गांव में, और चैतन्य महाप्रभु भी आए तो 24 वर्ष में सन्यास ले लिया और फिर झारखंड के जंगलों में घूमते रहे। जंगल बहुत प्रिय है, वन बहुत प्रिय है, अतः भगवान को ढूंढना है तो सिटी में मत ढूंढना, इस धूल और धुएं में भगवान खड़े नहीं रहेंगे। भगवान को यदि ढूंढना है तो वृंदावन में जाकर ढूंढना, निश्चित वहां भगवान आपको मिलेगा। तो इस प्रकार हरे कृष्णा हरे हरे। बताइए ऐसे स्थान पर भक्त भी नहीं रह सकते हैं, भगवान कैसे रहेंगे? सिटी में आकर भगवान भी परेशान हो जाते होंगे। कुछ लोगों ने पूछा, प्रभु जी गांव में बहुत चुड़ैल और भूत ये सब बहुत होता है। बोला टेंशन मत लो, शहरों में तो भूत भी आने से डरेगा, क्योंकि शहर के मनुष्य ही भूत जैसे हो गए हैं। आपने कभी सुना शहरों में भूत आया? कभी नहीं, ये सब गांव में होता है। भूतों को भी शांति चाहिए। तो इस प्रकार अब शहरों की जिंदगी क्या बताए, मीरा रोड में रहने वाले या बोरीवली में रहने वाले किस प्रकार से ट्रेन में चढ़ते हैं, वास्तव में मनुष्य की बुद्धि कहाँ चली गई, ये भ्रमित हो जाते हैं। कहाँ मनुष्य ने अपनी बुद्धि रख दी? भगवान जब बुद्धि बांट रहे थे तब ये मानव कहाँ गया था? नहीं तो विचार कीजिए कि 9:50 सुबह 9:30 की ट्रेन में मीरा रोड स्टेशन पर खड़े हैं और चर्च गेट जाना है, आप किसी रास्ते पर गली पर घूमने वाले कुत्ते को साथ में लेकर प्लेटफॉर्म पर चढ़िए, पहले तो वो कुत्ता प्लेटफॉर्म पर जाएगा ही नहीं, और फिर भी जबरदस्ती उसे घसीट कर लेकर जाइए और ट्रेन आएगी और कुत्ते को बोलिए चढ़ जाओ, वो कभी नहीं चढ़ेगा, लेकिन आज का मनुष्य तुरंत चढ़ जाएगा। अब बताइए मनुष्य बुद्धिमान है या पशु बुद्धिमान है? तो इस प्रकार खैर हम तो भगवान रामचंद्र की कथा कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र को वन बहुत पसंद है, अपनी इच्छा से वन में गए और वन में जाकर अनेकों उन्होंने लीला की। उनमें से एक लीला रावण देवी सीता का हरण करके चला गया। भगवान श्री रामचंद्र उस सीता को ढूंढते ढूंढते बहुत रो रहे थे, दर दर भटक रहे थे, वृक्ष को पूछते थे, डालियों को पूछते थे, पत्थर को पूछते थे, पक्षियों को पूछते थे, मेरी सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। उस समय ढूंढते ढूंढते किष्किंधा में गए, हनुमान जी के साथ मित्रता हुई, सुग्रीव के साथ मित्रता हुई, बालिका वध हुआ, और फिर हनुमान जी के द्वारा यह पता चला कि भगवान श्री रामचंद्र को बताया गया कि जगत जननी माता सीता लंका में है और हमें लंका जाकर सीता को वापस लाना है। भगवान श्री रामचंद्र की सारी सेना सुसज्जित होकर लंका जाने के लिए तैयार है, अनेकों वन पर्वतों के मार्ग से होकर भगवान श्री रामचंद्र की सेना समुद्र के तट पर आ गई, और समुद्र के तट पर आकर बहुत बड़ा प्रश्न उठा, अब क्या करें, क्योंकि हम सबको समुद्र को पार करके लंका में जाना है, रावण का वध करना है, लेकिन अब हम कैसे जाएंगे? अनेकों लोग अलग अलग उपाय बताए, परंतु भगवान श्री रामचंद्र ने कहा एक काम करते हैं, समुद्र को प्रसन्न करते हैं, यदि हम समुद्र को प्रसन्न करेंगे तो समुद्र हमें रास्ता दे देंगे, हम लोग चलकर समुद्र के पार उतर जाएंगे, और समुद्र को प्रसन्न करने के लिए मैं यहां पर उपवास करूंगा। तब लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो गए, बोले प्रभु हम लोग सूर्य वंश के आदमी हैं, और सूर्य वंश के राजा कभी उपवास नहीं करते हैं। प्रभु हाथ में धनुष उठाइए, बाण चढ़ाइए, तुरंत रास्ता दे देगा। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बोले लक्ष्मण, यदि प्रेम से काम बनता है तो ये खून खराबा करने की आवश्यकता नहीं। बड़े शांत थे भगवान श्री रामचंद्र। यद्यपि भगवान को, श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, यद्यपि भगवान को ये उपवास करने की जरूरत नहीं थी, परंतु नर लीला में थे, एक मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति का रोल कर रहे थे, तो मर्यादा में रहकर भगवान श्री रामचंद्र ने उपवास किया। और उपवास करना प्रारंभ, अनशन आमरण व्रत ले लिया, न कुछ खाना है न कुछ पीना है। समुद्र के तट पर कुश बिछाकर भगवान श्री रामचंद्र बैठ गए। इनके साथ सब लोग बैठे, लखनलाल खड़े हैं। और धीरे 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 समय बीत रहा है। 12 घंटा 13 घंटा 24 घंटा बीता, एक दिन समाप्त हुआ, लेकिन समुद्र टस से मस नहीं हुआ। दूसरा दिन प्रारंभ, दूसरा दिन समाप्त हुआ, फिर भी समुद्र प्रकट नहीं हुआ। भक्तों, तीसरा दिन प्रारंभ, तीसरा दिन जब समाप्त हुआ, तब रामायणकार कहते हैं, विनयन मागत जल्दि जड़, गए 3 दिन बीत। 3 दिन बीत गए आज, और भगवान श्री रामचंद्र विनय कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और समुद्र के लिए उपवास कर रहे हैं, लेकिन यह जड़ समुद्र 3 दिन बीतने के बाद भी भगवान को रास्ता नहीं दे रहा है। जब 3-3 दिन बीत गए और उस समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो बोले राम सकोप तब, तब भगवान श्री रामचंद्र क्रोधित हो गए, और भय बिनु होई न प्रीति। भगवान श्री रामचंद्र जीवन में प्रथम बार क्रोधित। भक्तों, इस पर आचार्यों ने बहुत बहुत टीकाएं लिखी हैं। प्रश्न ये हो सकता है कि भगवान श्री रामचंद्र 3 दिन तक ही उपवास क्यों किए? एक दिन उपवास करते और क्रोधित हो जाते, या 2 दिन उपवास करके क्रोधित हो जाते, 3 दिन ही क्यों? इसी को कहते हैं भगवान की कथा को तत्व से समझना। हमने तो सुन लिया 3 दिन उपवास किए, क्रोधित हो गए, 3 ही दिन क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि हम जब भी कोई तीर्थ में जाते हैं, तो उस तीर्थ में कम से कम हमें 3 दिन रहना चाहिए, तब उस तीर्थ का पूर्ण फल, पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तीर्थ में 3 दिन रहना चाहिए। और इस बात को पद्म पुराण में भगवान श्री रामचंद्र भरत जी से भी कहते हैं कि भरत, हम जब वहां पर गए थे समुद्र के तट पर, तब हम लोग 3 दिन तक समुद्र पर तट पर बैठकर उपवास किए, यह मानकर कि हमारे 3 दिन तक उपवास करने से समुद्र प्रसन्न हो जाएगा और मुझे अपना पुत्र मानकर रास्ता दे देगा। तो इस प्रकार अनेकों पुराणों से, प्रमाण से यह ज्ञात होता है कि किसी भी तीर्थ में 3 दिन रहना चाहिए। तो प्रश्न होता है, ये थोड़ी ना कोई तीर्थ था, समुद्र कोई तीर्थ है? बोले हाँ, इस संसार में सबसे बड़ा तीर्थ यदि कोई है तो वो है समुद्र। कारण, कारण यह है, इस संसार में जितनी भी पवित्र नदी पवित्र तीर्थों से होकर चलती है, ये सभी पवित्र नदियां आखिर समुद्र में जाकर मिलती है। चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, अलकनंदा, गोमती, जो भी नदी है, ये सभी नदी समुद्र में मिलती हैं। अतः समुद्र सभी पवित्र नदियों का अगाह जल है। समुद्र में यदि हम स्नान करते हैं तो सभी नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। और यह बात चैतन्य महाप्रभु ने साबित किया जब हरिदास ठाकुर को उन्होंने समुद्र में स्नान कराया। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने ऐलान किया कि आज से यह समुद्र इस दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि इस समुद्र में मेरे हरिदास ने स्नान किया है। धन्य है हरिदास ठाकुर, जिस हरिदास ठाकुर को भगवान ने मेरा कहा है। इस संसार में लाखों लोग कृष्ण को, भगवान को अपना मानते हैं, कृष्ण मेरे हैं, मेरे हैं, परंतु भगवान अपना किसे मानते हैं? तब चैतन्य महाप्रभु, वो दिव्य लीला, जब हरिदास ठाकुर ने अपना प्राण त्यागा, तब चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर की अंत्येष्टि क्रिया किए और जगन्नाथपुरी की उस गलियों में अपनी झोली को फैलाकर भीख मांगे, आज मेरे हरिदास के लिए आप दान दीजिए, मेरे हरिदास के लिए दान दीजिए। जिस हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों में उठाया, उठाकर नृत्य कीर्तन किया और अंत्येष्टि क्रिया की, धन्य है वह हरिदास ठाकुर। आज भी यदि कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसे अपना मान लेते हैं। और उसमें गीता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने के साथ साथ भगवान की भक्ति का प्रचार करता है तो भगवान मान लेते ये मेरा आदमी है, ये अपना है। और जब भगवान ने हमें अपना मान लिया तब दुनिया की क्या परवाह है। विचार कीजिए, यदि दुनिया के सब लोग हमें अपना मान ले तो क्या दे सकते हैं, है ना। हम लोग रात दिन लोगों की सेवा करते हैं, इसको बुरा न लगे इसकी सेवा करो, उसे बुरा न लगे उसे अच्छा वचन कहो, इसको बुरा न लगे, रात दिन लोगों को अच्छा लगाने के लिए उनकी सेवा करते हैं। कृपण दुर्जन है? दुर्जनों की सेवा करते हैं यह मान करके उसे बुरा न लगे और वो लोग मुझे अपना समझे। लेकिन हम कितनी भी सेवा करें तो वो लोग हमें अपना समझने वाले नहीं है। और यदि संसार के लोग हमें अपना मान भी ले क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। अरे बड़े बड़े देवता भी वैकुंठ नहीं दे सकते हैं तो संसार के साधारण लोग हमें क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं। पूरी दुनिया यदि हमें अपनी मान ले कुछ नहीं मिल सकता है, लेकिन दुनिया को छोड़कर एक कृष्ण यदि हमें अपना मान ले तो दुनिया का सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। अतः इस संसार में हम कुछ भी कार्य करें, कर्म करें तो कृष्ण के लिए करें, भगवान के लिए करें। इस संसार में जो व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करता है, भगवान के लिए कर्म करता है, भगवान उसे अपना मान लेते हैं। और भगवान ने जिसको अपना मान लिया दुनिया को उसे अपनाना ही पड़ेगा, निश्चित उसे अपनाना पड़ेगा। तो समुद्र के तट पर भगवान 3 दिन तक इसलिए बैठे क्योंकि समुद्र एक तीर्थ स्थान है। तो कहते विनयन मांगत जल्दी जड़। तो प्रश्न ये होता है कि समुद्र 3 दिन तक भगवान को दर्शन क्यों नहीं दिया। मैं आपको एक छोटी सी कथा का स्मरण कराऊं। जब इसके पहले हनुमान जी महाराज समुद्र को लांघकर लंका जा रहे थे तो समुद्र ने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र के भक्त हनुमान जी महाराज इतना अच्छा कार्य करने के लिए चले हैं और छलांग लगाए हैं, बेचारे थक गए होंगे। अतः हनुमान जी महाराज को विश्राम देने के लिए समुद्र ने मैनाक पर्वत को भेजा। विचार कीजिए, समुद्र ने यह सोचकर कि ये हनुमान जी राम के भक्त हैं अतः मैं उनकी सेवा करूं, तो हनुमान की सेवा करने के लिए मैनाक पर्वत को समुद्र ने भेजा। तो जिस भगवान के भक्त की सेवा करने के लिए समुद्र तैयार है, वो साक्षात भगवान आए हैं, 3 दिन तक उपवास किए हैं, फिर भी समुद्र प्रकट नहीं हुआ, आखिर कारण क्या है। बात समझ में आ रही है ना। जिसके भक्त की सेवा समुद्र ने कर दी तो साक्षात भगवान की सेवा क्यों नहीं की, इसके पीछे कारण। इसके पीछे कारण नंबर 1 ये था कि समुद्र की इच्छा थी कि समुद्र के उत्तर तट पे रहने वाले कुछ असुर, कुछ मनुष्य आसुरी वृत्ति को प्राप्त कर चुके थे और वे समुद्र में स्नान करके दूषित कर रहे थे, इस संसार में उत्पात मचा रहे थे। तो समुद्र ने देखा कि जब तक भगवान राम को क्रोध नहीं आएगा तब तक समुद्र के उत्तर तट पर रहने वाले इस दुष्टों का विनाश नहीं होगा। अतः समुद्र ने राह देखा कि जब भगवान राम को क्रोध आएगा तब मैं प्रकट होऊंगा, क्योंकि भगवान क्रोधित होंगे और क्रोधित होकर अपने धनुष पर बाण चढ़ाएंगे, और जब भगवान धनुष पर बाण चढ़ाएंगे मैं प्रकट हो जाऊंगा और भगवान की जो भी इच्छा होगी मैं पूर्ण कर दूंगा। फिर प्रश्न उठेगा कि भगवान का एक नियम है, एक पत्नी एक वचन एक बाण, एक बार धनुष पर बाण चढ़ा दिया तो फिर वह वापस नहीं जा सकता है। तब प्रश्न उठेगा कि वह बाण कहां पर छोड़े, तब मैं कह दूंगा कि उत्तर दिशा में वे असुर मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, आप उस बाण को वहां पर छोड़ दी। तो यह है मर्म कथा का। समुद्र की इच्छा थी कि वे उत्तर तट में रहने वाले लोग, लेकिन फिर भी संतों ने बहुत मंथन किया कि समुद्र की यदि इच्छा थी कि वहां उत्तर तट में रहने वालों का वध हो तो भगवान श्री रामचंद्र तट पर आए तभी समुद्र प्रकट हो गया होता और प्रेम से कहा होता प्रभु आप रास्ता ले लीजिए परंतु उसको मार दीजिए, तो भगवान तुरंत उसको मार देते। परंतु समुद्र ने कोई दूसरा उपाय अपनाया, इसलिए समुद्र को जड़ कहा गया। बुद्धि तो चलाई लेकिन थोड़ी कम बुद्धि चली, इसलिए समुद्र को रामायणकार जड़ कहते हैं। और इसके अगले श्लोक में, पिछले श्लोक में भी समुद्र अपने आप को जड़ कहता है। तो खैर, तीन दिन तक उपवास किया और भगवान श्री रामचंद्र को क्रोध आया। तो वास्तव में भगवान श्री रामचंद्र को क्रोध आ नहीं सकता है। श्री विजय ध्वज अपनी टीका में लिखते हैं कि नित्य पूर्ण सुख ज्ञान स्वरूपो असो यतो विभु। जो भगवान पूर्ण है, नित्य सुख में विचरण करते हैं, ततो राम इति आख्या। और जो अपने सुख से जगत को सुख देते हैं, कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि। रामायणकार कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र आनंद के समुद्र है, और उस आनंद के समुद्र की एक बूंद, एक सिकर इस दुनिया में आई है, जिससे हम लोग कभी कभी सुखी होते हैं। तो ऐसे आनंद सुख के सागर, जो अपने आनंद से जगत को आनंदित करते हैं, इसलिए उनका नाम हुआ है राम। जो साक्षात सुखी है, जो परम पूर्ण है, ऐसे भगवान को कभी क्रोध आ नहीं सकता है। परंतु समुद्र को पाठ पढ़ाने के लिए, समुद्र को ज्ञात कराने के लिए भगवान श्री रामचंद्र को क्रोध आया। भगवान श्री रामचंद्र को क्रोध आया और क्रोध में भगवान श्री रामचंद्र बोल दिए, लक्ष्मण बाण चराचरियानु सोशो बारे विसीख कृसानु। लक्ष्मण जाओ, तीन दिन तक उपवास हुआ, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, राम क्रोधित और बुलाया लखन। लक्ष्मण जी दौड़ कर आए, बोले जाओ और सर्प के समान मेरे बाण और धनुष लेकर आओ। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु ये तो मैं पहले दिन बोल रहा था, आपने खाली फोकट तीन दिन निकाल दिए, मैं तो पहले ही कह रहा था। भगवान श्री रामचंद्र आज पूर्ण क्रोधित, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। लखन, मैंने मन में सोचा था कि ये समुद्र मान जाएगा, मैंने सोचा था कि इनकी स्तुति करने से, उपवास करने से समझ जाएगा, परंतु इस संसार में किसी सठ के सामने आप कितनी बार कितना भी विनय करो, किसी सठ के सामने कितनी भी स्तुति करो, कभी समझ नहीं सकता है। भगवान श्री रामचंद्र ने बहुत सुंदर एक उपदेश दिया कि संसार में कुछ वस्तु ऐसी होती है, जब तक उसको मारा न जाए, पीटा न जाए, तब तक वो ठीक से चलती नहीं है। आगे चलकर समुद्र ने ही इस बात को कहा, डोल गवार शूद्र पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकारी। पूरी व्याख्या करने से तो गड़बड़ी हो जाएगी लेकिन संक्षिप्त में इतना ही सुनिए कि संसार में कुछ वस्तु ऐसी होती है, जब तक उसको मारा न जाए, पीटा न जाए, जब तक उसके ऊपर ताड़न न किया जाए, क्रोध न किया जाए, तब तक वह ठीक से चलता नहीं है। और उसमें से पहला है ढोल। ढोल मृदंग, मृदंग पड़ा है और आप उसे प्रेम करो तो मृदंग बजेगा नहीं। मृदंग को और ढोल को अच्छे से बजाना है तो पीटना पड़ेगा, तब जाकर वह ठीक से बजेगा। तो आगे बहुत कुछ कहा है लेकिन मैं नहीं कहूंगा लेकिन कुछ वस्तु ऐसी होती है जो बिना क्रोध के समझते नहीं है। भगवान गिनाते, सठ सन विनय, सठ के सामने विनंती करोगे वो कभी नहीं मानेंगे। और कुटिल सन प्रीति, और जिसका हृदय कुटिल है, मैला है, गंदा है, उसके साथ कितना भी प्रेम करो वह कभी तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, इस संसार में प्रेम उससे करना चाहिए जिसके हृदय में कुटिलता न हो, जिसका हृदय कुटिल है। कुटिल माने, संतगण दृष्टांत देते हैं, कुटिल माने राजा भरत हरि की पत्नी पिंगला। बताइए, राजा भरत हरि चक्रवर्ती सम्राट राजा थे, अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे, उसके प्रेम की सीमा थी। एक बार एक किसी ऋषि मुनि ने राजा भरत हरि को अमर फल दिया, बोले राजन ये मेरे पास अमर फल है, इस अमर फल को खा लो तुम अमर हो जाओगे। तो राजा भर्तहरि ने अमर फल ले लिया, परंतु सोचा कि मैं मेरे शरीर से ज्यादा प्रेम मेरी पत्नी पिंगला को करता हूं। राजा भर्तहरि अपनी पत्नी पिंगला के पास गए और वह अमर फल दे दिया। बोले तुम ही अमर फल खा लो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। कुटिल सन प्रीति, प्रीति तो की लेकिन कुटिल के साथ की राजा ने। पिंगला का हृदय इतना कुटिल था कि पिंगला राजा को नहीं किसी और से प्रेम करती थी। राजा की पत्नी थी, राज रजवाड़े राज रानी थी, परंतु किसी घोड़े की रखवाली करने वाले शूद्र के साथ प्रेम करती। चलो अब तक प्रेम ठीक था, उसके साथ करती थी, लेकिन राजा ने जब अमर फल दिया और राजा का जब इतना समर्पण देखा, तब तो उसका प्रेम राजा के प्रति होना चाहिए। लेकिन इतना कुटिल हृदय था इस पिंगला का, उस अमर फल को तो ले लिया, लेकिन रातों रात वो शूद्र घोड़े की रखवाली करने वाले के पास गई और कहा, मेरे पति ने, राजा ने मुझे अमर फल दिया है, मैं मेरे पति राजा से करोड़ गुना प्रेम तुमसे करती हूं, ये अमर फल तुम खा लो। कुटिल सन प्रीति। अब पिंगला ये नहीं जानती थी कि मैं जिससे प्रेम करती हूं वो मेरे से भी ज्यादा कुटिल है, ये कुटिलों की परंपरा है। तो उस घोड़े की रखवाली करने वाले शूद्र ने अमर फल ले लिया और लेकर पिंगला चली गई, लेकिन वह घोड़े की रखवाली करने वाला पिंगला से प्रेम नहीं करता था, वह किसी वेश्या से प्रेम करता था। वह उसी रात को वेश्या के पास गया और वेश्या को कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, और वेश्या को अमर फल दे दिया वेश्या से प्रेम। अब ये घोड़ा वाला नहीं जानता था कि मेरे से ज्यादा कुटिल वो वेश्या है। वेश्या ने अमर फल तो ले लिया, लेकिन सोचा कि ये अमर फल खाकर मैं क्या करूंगी, यदि ये अमर फल मैं राजा को बेच दूंगी तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। दूसरे दिन वो वेश्या अमर फल को लेकर राजा भर्तहरि के पास आई और राजा भर्तहरि को 2-3 लाख में वो फल बेच दिया, राजा ने ले लिया। लेकिन राजा सोचने लगा, ये फल तो मैंने मेरी पत्नी को दिया था। और सारा इन्वेस्टिगेशन जब राजा ने किया तब पता चला, अरे रे, मेरे से ज्यादा प्रेम इस दुनिया में मैं मेरी पत्नी से करता था, लेकिन वो इस प्रकार किसी और से। राजा को तुरंत वैराग्य आया, अपने राज रजवाड़े पत्नी सबको छोड़कर चले गए वन में। कहने का तात्पर्य यह है, कुटिल के साथ आप कितना भी प्रेम करो, आपको उससे प्रेम कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सठ सन विनय, भगवान ने यह नीति बताई। लखन बहुत क्रोध में भगवान थे और क्रोध में बताए, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। और जो कृपण है, कृपण माने कंजूस, जो कंजूस है उसके सामने कितनी भी सुंदर नीति की बात करो, कंजूस के सामने आप कितनी भी सुंदर नीति की बात करो कि आप भगवान को 1 रुपया दोगे आपको 1000 मिलेगा, लेकिन ये चाराना भी नहीं देगा, कितनी भी सुंदर। तो सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सद ज्ञान कहानी। और जो व्यक्ति मोह माया और ममता में फंसा है, ऐसे व्यक्ति को तुम कितना भी समझाओ, कितना भी समझाओ, जो मोह में फंसा है वो कभी भी नहीं समझेगा। मोह और माया में फंसे रहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी बात को समझ नहीं सकता है। दृष्टांत के तौर पर धृतराष्ट्र, आपने सुना भगवद गीता का उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया और वही घर पे बैठे बैठे संजय ने धृतराष्ट्र को दिया। ये गीता का उपदेश दो लोगों ने सुना, अर्जुन ने और धृतराष्ट्र ने, लेकिन दोनों के जीवन का परिवर्तन देखिए। युद्ध के पहले अर्जुन को मोह था, कृष्ण ने अर्जुन को 45 मिनट तक भगवद गीता का ज्ञान दिया और गीता का ज्ञान देकर कृष्ण ने कहा, अर्जुन अब क्या कैसा लग रहा है? तब अर्जुन ने कहा, नष्ट मोह स्मृति लब्धवा, हे कृष्ण, मैं तो मोह में फंसा हुआ था, लेकिन आपके मुख से गीता का ज्ञान सुनकर मेरा सारा मोह चला गया। अब बताइए मुझे किस किस को मारना है, मैं युद्ध करने के लिए तैयार। और यही गीता का ज्ञान एज इट इज, थोड़ा भी 19-20 नहीं, एज इट इज लाइव टेलीकास्ट संजय ने धृतराष्ट्र को दिया और धृतराष्ट्र ने सारा गीता का ज्ञान सुना और सुनने के बाद संजय को कहना नहीं पड़ा। धृतराष्ट्र ने ही कहा, अपने पुत्र के मोह में इतना अंधा था धृतराष्ट्र, कहा संजय तुमने गीता तो सुना ही लेकिन अब बताओ आगे क्या हुआ। संजय ने कहा महाराज तुम्हारा एक पुत्र 100 करोड़ में से एक मर गया। अरे रे बहुत दुख की बात है, ठीक है बताओ आगे क्या हुआ। महाराज अब 18वें दिन बताया, महाराज आपके 100 पुत्र में से 99 मर गए, अभी भी आपके हाथ में, आप युद्ध को रुकाओ। अरे रे मेरे हृदय में बहुत दुख है, मेरे 99 पुत्र मर गए। संजय बताओ आगे क्या हुआ। अरे मूर्ख आगे क्या हुआ, क्या अब गीता सुनी है, उपदेश ग्रहण करो और जाओ जल्दी उस युद्ध को रुकाओ। परंतु जो लोग अपने पुत्र के, पत्नी के, परिजन के मोह में मोहित है, उसे कितना भी समझाया जाए, गोस्वामी जी कहते हैं मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु गुरु मिले विरंची समान। ऐसे मूर्ख को समझाने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी आ जाए वो समझ नहीं सकते हैं। तो ममता रत सन, जो ममता में रत है उनके सामने सन, सन माने किसी भी शम की बात नहीं की जा सकती, वो समझेगा नहीं। और ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरति बखानी, और लोभी के सामने कितनी भी बड़ी वैराग्य की बात करो उसको कभी वैराग्य चढ़ नहीं सकता है, लोभी के सामने वैराग्य की बात नहीं। क्रोधी सम काम ही हरि कथा, और क्रोधी के सामने आप कितनी भी शांति की बात करो वो क्रोधी व्यक्ति कभी समझ नहीं सकता है, और कामी व्यक्ति के सामने आप कितनी भी हरि कथा सुनाओ उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। असर बीज भय भय फल जाता, जैसे उदाहरण के साथ कहते हैं कि ये सठ, ये क्रोधी, ये कामी, ये लोग वैसे ही नहीं मानते हैं जैसे किसी बीज को आप कंक्रीट की भूमि में डाल दो तो वो कभी नहीं फलता है, वैसे सठ को आप कितना भी मनाओ वो कभी नहीं मानता है। ये समुद्र सठ है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, इतना कह के भगवान श्री रामचंद्र ने अपना सारंग हाथ में ले लिया और चाप चढ़ा दी, यह मन लक्ष्मण के मन भावा। और जैसे ही भगवान ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया लक्ष्मण बहुत सुखी हुए है? कहते हैं यह मत लक्ष्मण के मन भावा, जब भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया लक्ष्मण जी नाचने लगे, वाह प्रभु वाह, ये काम पहले ही कर देना था। लक्ष्मण जी बहुत आनंदित हुए, बोले लक्ष्मण को आनंद होने का भाव क्या, लक्ष्मण ये खून खराबा में ही मानते हैं, किसी को मारने पीटने में लक्ष्मण को आनंद आता है? बोले ऐसा नहीं है, लक्ष्मण जी कभी भी अपने बड़े भाई राम का अपमान सहन नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे राम लीला हो या कृष्ण लीला हो, चाहे बलदेव हो या लक्ष्मण हो, वे कभी भी अपने प्रभु के अपमान को सहन नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र ने 3 दिन तक उपवास किया और फिर भी समुद्र ने दर्शन नहीं दिया, ये भगवान राम का बहुत बड़ा अपमान था। और लक्ष्मण को था कि यदि प्रभु आज्ञा दे तो मैं मार डालूं इसे, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा नहीं थी, परंतु बड़े भाई ने ही अपने हाथ में धनुष बाण उठा लिया तो लक्ष्मण के हृदय में बहुत सुख हुआ। संधा ने प्रभु बिसखी कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, भगवान श्री रामचंद्र ने जैसे ही अपने चाप को खींचा तुरंत समुद्र खोलने लगा, समुद्र गर्म हो गया। जैसे इस ठंडी की ऋतु में हमारे घर पर माता जी या भजिया पकाने के लिए तेल गर्म करती है, तेल जब गर्म होता है तब खोलने लगता है, वैसे समुद्र खोलने लगा, दग्ध हो गया। और समुद्र में रहने वाले समस्त जीव, मगर, नाग और सब लोग दग्ध हो गए। और उस समय सभी जीव समुद्र के शरण में आए, और उस समय समुद्र देवता कनक तार भरी मणि गणक नाना, उस समय ही समुद्र देवता विप्र रूप ब्राह्मण का रूप लेकर अपने हाथ में सोने की थाली लेकर और समुद्र के समस्त रत्न और समस्त हीरे मोती जवेरात को लेकर भगवान के शरण में आकर दंडवत प्रणाम कर दिए। इतना तो हम लोगों ने बहुत बार सुना है, लेकिन इसके पीछे तात्पर्य देखिए कि समुद्र देवता अपने निज स्वरूप में नहीं आए, विप्र रूप धरी समुद्र ब्राह्मण का रूप लेकर आए, क्योंकि समुद्र देवता ने सोचा कि भगवान फिलहाल वर्तमान में बहुत क्रोधित है, और इस क्रोधित भगवान के सामने जाऊंगा तो अपने बाण से मुझे धड़ से मस्तक अलग कर देंगे, परंतु ब्राह्मण का रूप लेकर जाऊंगा तो समुद्र देवता को वह श्लोक याद था, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान श्री रामचंद्र कुछ भी करेंगे, कितने भी क्रोधित हो जाएंगे, परंतु ब्राह्मणों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। नमो ब्राह्मण्य देवाय। और भागवत में भी आया है, गो विप्र सुर साधु नाम। भगवान तो ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए तो अवतार धारण करते हैं, अतः अपनी रक्षा कराने के लिए समुद्र ब्राह्मण का रूप लेकर आया। तो इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे भगवान ब्राह्मणों का आदर करते हैं तो हमें भी भगवान का आदर करते हुए ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। तो इस प्रकार ब्राह्मण का विप्र रूप धरी और हाथ में कनक थाल भरी, एक सोने की थाली और उसमें बहुत सुंदर हीरे जवेरात लेकर आए। भक्तों, समुद्र देवता ने बहुत सुंदर सिद्धांत साबित किया, इस जगत में हम कभी भी भगवान के दरबार में जाए, हम कभी भी भगवान के मंदिर में जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने हाथ में हीरे जवेरात लेकर न जाओ तो कोई बात नहीं, परंतु कम से कम फल और फूल तो लेकर जाओ, जिससे भगवान हमारे इस कार्य को देखकर प्रसन्न हो जाए। भगवान चाहते हैं, मांगते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। आप दीजिए मुझे पत्र, दीजिए पुष्प, दीजिए फूल, दीजिए। ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए हमारे जीवन का। शास्त्र में लिखा है, रिक्त हस्तो न गच्छेत, खाली हाथ कभी भी नहीं जाना चाहिए तीन जगह पर। रिक्त हस्तो न गच्छेत, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां? राजानम देवताम गुरुम। राजा के वहां, भगवान के वहां और गुरु के वहां कभी भी हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारी योग्यता के अनुसार, हमारी जो भी योग्यता है तो वह लेकर हमें इनके पास जाना चाहिए। ये शास्त्र का सिद्धांत है, ये आदर है, ये प्रतिष्ठा। समुद्र देवता आए और आकर भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिए। और उस समय मान सरोवर में काक भूषणी जी ने ऐलान किया, काटे ही पद कदरी फरई कोटि जतन को सींच। हे गरुड़ जी, ध्यान से सुनिए, इस संसार में सठ व्यक्ति को कितना भी मनाओ, परंतु जब तक उसे पाठ नहीं पढ़ाओगे, उस पर क्रोध नहीं करोगे, वो वैसे ही नहीं मानेगा जैसे केले के वृक्ष में कितना भी सिंचन करो। अब जो इसने केले का वृक्ष देखा है, अनुभव किया है, उसे ज्ञात होगा, आप केले के वृक्ष में कितना भी पानी डालो, परंतु जब तक उसकी डाली को काटोगे नहीं, तब तक केला फलीभूत नहीं होता है, फलता नहीं। वैसे ही जब तक सठ को मारोगे नहीं, तब तक उसमें बुद्धि नहीं आती है। समुद्र देवता आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किए। इसके पूर्व के श्लोक में भगवान को स्तुति किए, नत्वाम वयम जड़ दियो नु विदाम भूमन। हे भूमन, हे प्रभु, इस संसार में मेरे जैसे जड़ जीव आपको जान नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कुटस्थ माधि पुरुषम जगताम अधीशम। आप कुटस्थ हो, आप निर्विकार हो। बहुत बहुत सुंदर व्याख्याएं हैं, परंतु हमें तो इस श्लोक पर आना है। निर्विकार हो आपको कभी। विकार का अर्थ होता है क्रोध। और समुद्र देवता ने इसके पिछले श्लोक में, 14वें श्लोक में कहा कि हे प्रभु, आप कुटस्थ निर्विकार, आपको कभी क्रोध हो नहीं सकता है। और देखा जाए तो भगवान श्री रामचंद्र ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्रोध समुद्र के ऊपर किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हम लोग क्रोध करते हैं, वैसे भगवान का क्रोध नहीं। हम जब क्रोध करते हैं तो क्रोध में आविष्ट होकर क्रोध करते हैं, और भगवान जब क्रोध करते हैं तो क्रोध को अपने वश में करके फिर क्रोध करते हैं। तो कुटस्थ मादि पुरुषम और यत सत्वत, हे प्रभु, आपके सत्व गुण से देवता प्रकट होते हैं, आपके रजोगुण से मनुष्य प्रकट होते हैं, और आपके तमोगुण से असुर प्रकट होते हैं। इस प्रकार स्तुति करने के बाद आज के श्लोक में समुद्र देवता भगवान श्री रामचंद्र से प्रार्थना विनंती करते हैं। ध्यान से श्लोक के सामने देखिए, कामम प्रयाहि जहि विश्वसो व मोहम। सर्वप्रथम कहते हैं कामम। कामम का अर्थ होता है, हे प्रभु, आप प्रसन्नता पूर्वक, आप निश्चिंत रहे, आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण होगी, आपको जो करना है वो करो। और प्रयाहि, प्रयाही माने आप जाओ। कामम प्रयाही, आपकी जो इच्छा है वह करो और आप यहां से जा सकते हो। हम कहते हैं ना प्राण प्रयाण समय, प्रयाण माने चले जाना, तो यहां पर प्रयाही का अर्थ है जाना। भगवान श्री रामचंद्र समुद्र के पास आए हैं और समुद्र कह रहे हैं कामम प्रयाही, हे प्रभु आप जाओ और जो करना है करो। तो मन में प्रश्न उठ सकता है कि संसार में सब लोग भगवान को बुलाते हैं, है ना, सब लोग कि हे प्रभु आप आइए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। वृत्रासुर तो प्रार्थना करते हैं अजात जन्मा अजात पक्षा, जैसे एक पक्षी आपकी राह देखता है वैसे हम आपकी राह देख रहे हैं। इस संसार में सब लोग भगवान को बुलाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। ये समुद्र भगवान को भेज क्यों रहा है, आप जाओ निकलो अब यहां से, ऐसा क्यों कह रहा है भक्तों? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। राज ये है, तत्व की बात ये है कि समुद्र ने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र दुखी है और दुख का कारण अपनी पत्नी का विरह, और भगवान श्री रामचंद्र को वास्तविक सुख तब होगा जब उनको अपनी पत्नी मिलेगी। तो समुद्र ने देखा कि मुझे भगवान को सुखी करने के लिए तुरंत यहां से भेजना चाहिए। तो देखिए यह है समुद्र की शुद्ध भक्ति का भाव। एक शुद्ध भक्त अपना स्वार्थ नहीं देखता है। हम लोग हमारा स्वार्थ देखते हैं, भगवान को कुछ भी हो लेकिन वो हमारे सामने आने चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान अब तक हमें दर्शन नहीं दिए, क्या भगवान हमें इस थर्ड क्लास जैसी जगह में बुलाएंगे, ऐसे थर्ड क्लास के देह में हम पुकारेंगे? हम लोग भगवान को हमारी तरह चलाना चाहते हैं, ये शुद्ध भक्ति नहीं। भगवान की तरह हमें चलना ये शुद्ध भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम अंतिम श्लोक महाभाव में स्थित आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम, हे कृष्ण गाढ़ आलिंगन देकर मुझे प्रसन्न करना हो या मुझे छोड़कर मुझे मर्माहित करना हो, आपको जो करना है करो। आपको जिसमें सुख मिलता है, मुझे छोड़ देने में आपको सुख मिलता है तो मुझे छोड़ दो, और मुझे आलिंगन देने में आपको सुख मिलता है तो आलिंगन दो। यथा तथा आपको जो करना है करो, परंतु मैं तो आपका ही बना रहूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। इस भाव से भगवान की भक्ति होनी। कहे प्रभु आपको दर्शन नहीं देने में आनंद है तो मुझे दर्शन मत दो, आपको मुझे दुखी करने में आनंद मिल रहा है तो मुझे दुखी करो, यथा तथा। तो ये है समुद्र का भाव। हमारा भाव भी ऐसा होना चाहिए कि हे प्रभु आपको जो अच्छा लगे, तत् सुख सुखित्व का भाव होना चाहिए कि कृष्ण के सुख में हम सुखी हैं, भगवान के सुख में सुखी। तो इस प्रकार कामम प्रयाह, एकादशी छोड़ने का समय हो चुका है पारण का समय, और श्लोक 10-20 को है ना, ठीक है, तो 5 मिनट में जल्दी जल्दी व्याख्या कर देते हैं। तो कामम प्रयाही, प्रयाही आप जाइए। तो भगवान को जाने का कह रहे हैं तो इसका अर्थ कुछ लोगों को लग सकता है कि भगवान आए हैं और उसको भगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान को जाने कह रहे हैं तो इसके पीछे शुद्ध भक्ति का भाव है। आगे कहते हैं कामम प्रयाही जही, जही का अर्थ होता है वध कर डालो, मार डालो। प्रभु आप जाओ और जाकर मारो किसको? विश्व वसो अवमोहम, विश्व वसो जो है वो रावण के पिता का नाम है। लगभग इसमें 80% लोगों को नहीं पता होगा, विश्व वसो रावण के पिता का नाम है। तो यहां पर रावण को क्या कहा गया? विश्व वसो अवमोहम। अवमोहम का अर्थ होता है मलमूत्र। प्रभुपाद जी का परपोट आपने सुना ना, ये रावण रावण नहीं, अपने पिता विश्व वसो का मलमूत्र है, बहुत बेकार है। और अवमोहम का अर्थ होता है बुरा मलमूत्र। प्रभुपाद जी ने इसका अर्थ किया है बुरा मलमूत्र, क्योंकि कुछ लोग सोच सकते हैं विश्व वसो तो बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, भगवान के भक्त के मलमूत्र माने बेकार मलमूत्र था। श्री प्रभुपाद जी परपोट में लिखते हैं कि संसार में पुत्र का अर्थ होता है जो अपने पिता को पू नामक नरक से तार दे। कृष्ण की शुद्ध भक्ति करके वे स्वयं अपना उद्धार करें और अपने माता पिता का उद्धार करें, उसे पुत्र कहा जाता है। पू माने पू नरक और त्र माने त्राण करना, पिता को तारे, पितृ को तारे, उसे पुत्र कहते हैं। लेकिन कुछ पुत्र अपना उद्धार की बात तो दूर रही, अपने पितरों को तारने की बात तो दूर रही, अपनी पूरी पीढ़ी को नरक में भेज देते हैं, ऐसे पुत्र पुत्र नहीं माने जाते हैं। भागवत में अनेक स्थानों पर इस बात का जिक्र हुआ है। जहां ययाति महाराज का प्रसंग है, वहां पर इस बात को कहा गया है, उत्तमस चिंतितम कुरियात, अपने पिता के मन की इच्छा जानकर उसे पूर्ण करे, उसे उत्तम पुत्र कहा जाता है। परोपकारी तु मध्यम है, पिता आदेश दे और कोई कार्य करे तो वो मध्यम कोटि का पुत्र है। पिता बार बार आदेश दे और फिर भी वो कार्य न करे तब वो पुत्र पुत्र नहीं, वो अपने पिता का मलमूत्र है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पुत्र और मूत्र दोनों एक स्थान से प्रकट होते हैं, अतः पुत्र को चाहिए कृष्ण की शुद्ध भक्ति करे और अपने पितृ का उद्धार करे, और यदि यह नहीं करते हैं तो वे बहुत निगरहित माने जाते हैं। रावण, रावण के विषय में देखा जाए तो रावण का जन्म किस कुल में हुआ? ब्रह्मा जी के पुत्र हुए पुलत्स्य, और पुलत्स्य के पुत्र हुए विश्वश्वा, और विश्वश्वा के पुत्र हुए रावण। परंतु भक्तों, और रावण का और रावण के भाई का नाम है कुबेर, ये कुबेर जी का भाई विश्वश्वा का पुत्र। परंतु प्रॉब्लम यह थी कि विश्वश्वा की पत्नी जो थी वह दैत्य राज सुमालया की पुत्री थी। रावण के पिता ब्राह्मण थे और रावण की माता जो थी वह असुर थी। इसलिए मैंने आज इंग्लिश में पढ़ा कि रावण ब्राह्मण भी था और असुर भी था, 50-50 था, ऐसे लिखा था। रावण इज 50% ब्राह्मण, रावण 50% असुरा। तो ये 50-50 था। लेकिन कुल, जब किसी व्यक्ति के कुल की बात आती है तो उसके पिता का कुल देखा जाता है, है ना? तो रावण जिस कुल में था बड़ा पवित्र कुल था, ब्रह्मा ब्राह्मणों का कुल, पुलत्स्य ऋषि का कुल था। लेकिन भक्तों, ये सत्य बात है कि किसी भी बालक का कुल पिता का होता है लेकिन संस्कार माता का लगता है, है ना? पिता मात्र नाम देता है, पिता क्या देता है और माता क्या देती है? पिता मात्र नाम देता है और पिता मात्र कुल देता है, बाकी बालक को संस्कार देना ये माता का काम है। माता असुर वंश की थी, अतः असुर जैसा हुआ है। और यही बात राजा अंग के जीवन में भी आती है। राजा अंग भगवान हरि अंशांश जन्म न, परम पवित्र राजा, परंतु इसकी पत्नी मृत्यु की पुत्री थी, अतः इसका जो पुत्र हुआ वैण, वो अपनी मां के संस्कार के ऊपर गया और भयंकर अत्याचारी पापी हुआ और ब्राह्मणों के श्राप से उसे मारा गया। तो खैर, कुल बहुत पवित्र था, लेकिन ऐसे पवित्र कुल में भी ऐसा रावण जैसा दुष्ट प्रकट हुआ। रावण के विषय में दूसरी लाइन में कहते हैं, त्रैलोक्य रावणम आपनु ही वीर पत्नी, त्रैलोक्य तीनों लोगों को रावणम, रावण रावयति रोदती क्रुदयति। श्रीपाद सिद्ध स्वामी कहते हैं कि रावण का अर्थ होता है रावयति, और रावयति का अर्थ होता है रोदयति, रावण का अर्थ होता है रुलाना। कहते हैं त्रिलोकयम, त्रिलोक्य तीनों लोकों को अपने प्रचंड अत्याचार से जो रुलाता था उसे रावण कहा जाता है। रावण का अर्थ होता है अपने अत्याचार से रुलाना। अब रावण के विषय में तो रामायण में विस्तार से कहा गया है, चलत दशानन डोलती अवनी। ब्रह्मा और शिव जी से जब वरदान प्राप्त किया, पूरे संसार के नियम को बदल दिया, अपने सभी अनुचरों को बुलाया, आदेश दिया, साधुओं की साधना बंद करा दो, ध्यानियों का ध्यान बंद करा दो, तपस्वियों की तपस्या बंद कराओ, यतियों का यज्ञ बंद कराओ, और जाओ जो असुर है उन सबको अच्छी अच्छी फैसिलिटी प्रदान करो, और जो साधु धर्मात्मा है उसका वध करो, गायों को काटो, मारो, अत्याचार करो, विनाश कर दो, और इस पृथ्वी पर खून की नदियां बहा दो। रावण का एक ही काम था, और वो था इस संसार में अच्छी अच्छी स्त्रियों को अपने घर पर अपहरण लाकर रखना, अपहरण करके रखना, एक ही काम। और इसके पीछे इसका कारण था अभिमान। रावण कभी न मरता, परंतु रावण के जीवन में उनको गर्व बहुत था, और अभिमान के कारण अनेकों स्त्रियों को अपने पास लाकर रखा। तो त्रैलोक के रावण आप्रोही वीर पत्नी, हे वीर, भगवान श्री रामचंद्र को वीर कह रहे हैं कि हे वीर, वीर का अर्थ होता है सब कुछ करने में समर्थ। आप चाहो तो मुझे मार सकते हो, समुद्र देवता कह रहे हैं, आप चाहो तो इस समुद्र के ऊपर चलकर जा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन हे वीर, आप अपनी पत्नी को रावण को मारकर वापस लाओ। लेकिन किस प्रकार, ये मेरी विनंती है। तीसरी लाइन में कहते हैं, बंदी निह से तुम इह, इह यहां पर समुद्र के ऊपर बंदी बांधो, क्या सेतु, बंदी बांधो सेतु इह, इस समुद्र के ऊपर, इस समुद्र के ऊपर सेतु बांधो। भगवान ने कहा क्यों सेतु बांधो, तब कहते हैं यशसो वितत्य, प्रभु आप इस समुद्र के ऊपर सेतु बांधोगे तो आपका यश तीनों लोकों में फैल जाएगा, आप अपने यश का विस्तार करो, यशसो वितत्य। तब भगवान, तब समुद्र देवता कहते हैं गायन्ति दिग्विजयिनो, भगवान कहते हैं मेरा यश तो सब लोग गा ही रहे हैं, मुझे करने की क्या जरूरत। तब अंत में कहते हैं कि आपका यश जो गरीब लोग हैं वो लोग गाते हैं, लेकिन दिग्विजय बड़े बड़े राजा महाराजा आपका यश नहीं गाते हैं, परंतु जब आप समुद्र के ऊपर सेतु बनाओगे तब गायन्ति दिग्विजयिनो, बड़े बड़े राजा भी आपके यश को गाएंगे, क्योंकि आपका यह सेतु अद्वितीय होगा, इस संसार की कोई भी ताकत आपके जैसे सेतु का निर्माण नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार आप समुद्र के ऊपर सेतु बनाइए, यामु पेत्य भूपा और बड़े बड़े राजाओं का भी उद्धार कर दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे। इसके बाद ये कथा है किस प्रकार से सेतु बना और किस प्रकार से सेतु पार किए, हम फिर कभी सुनेंगे। अभी मात्र प्रसाद लेने के लिए आपके पास 5 मिनट है, 10-15 हो चुकी हैं, तो सभी भक्तों से निवेदन है आप सब लोग जल्दी जल्दी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए और प्रसाद लेने जाइए। हरे कृष्णा। गंधराज श्रीमद् भागवतम की, श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद है।